जनादेश 2019।
वेलकम टू जनादेश 2019। इन दिस प्रोग्राम वी विल ब्रिंग यू वेरियस न्यूज एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू जनरल इलेक्शंस। आई एम रीमा पाराशर। कार्यक्रम में आज हम लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासनी जी, आपका स्वागत है। तो पूरे देश को इंतजार है लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनावों की मतगणना का। लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी विधानसभाओं की मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक रुझान मिलने की संभावना है। परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और डाक से डाले गए मतों की गिनती होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा की किन्हीं 5 मतदान केंद्रों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के मतों और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा। मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतगणना केंद्रों में किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार सेवारत मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाक मत का उपयोग किया गया है। आकाशवाणी के साथ साथ विशेष भेंट में निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने कहा कि देश और विदेश में तैनात सेना के 86% जवानों ने मतदान किया है।
सैनिक भाई है, हमारे सर्विस वोटर हैं, जिनकी संख्या आज के दिवस में 18 लाख है, जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन सभी के वोटों की भी संगणना होती है, जो कि पहली बार हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। तो एक तरफ का ये मतपत्र गया था इलेक्ट्रॉनिक वे से, वापसी का स्पीड पोस्ट से आता है। उसके लिए हमने काफी व्यापक इंतजाम किए, क्योंकि उन 18 लाख जो हमारे सर्विस वोटर हैं उनसे लगभग 86% वोट वापस आ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
देर से नतीजे आने की आशंकाओं को लेकर सक्सेना ने कहा कि मतदाता पुष्टि पर्ची से मिलान में लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। ये भेंटवार्ता एफएम गोल्ड और इम्प्रेस चैनल पर रात 9:30 बजे सुनी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक खास रिपोर्ट।
In the run for the 60-seat Arunachal Pradesh Assembly, BJP has already won 3 seats uncontested. For the remaining 57 seats, 181 candidates are in fray, out of which 11 are women candidates. In the last assembly elections in 2014, Congress had won 42 seats, BJP 11 and others 7. After the assassination of NPP candidate and sitting MLA from Khonsa West Assembly constituency, Tirong Abo, yesterday, the security across the state has been beefed up. Director General of Police has informed that all necessary security arrangements have been made for smooth conduct of the counting. Rakesh Dole, AIR News, Itanagar.
Now moving to Odisha, where assembly election was also held with parliamentary elections. Out of 147 assembly constituencies, election has been held for 146 seats. In Patakura assembly seat, due to death of BJD candidate, the election has been postponed. Chief Minister Naveen Patnaik has contesting from 2 assembly seats, and Pradesh Congress President Viranjan Patnaik has also contested from 2 assembly seats. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ओडिशा में 21 संसदीय क्षेत्र के साथ 140 विधानसभा क्षेत्र का भी निर्वाचन 4 चरण में हुआ है। पहला चरण में 4 संसदीय क्षेत्र और 28 विधानसभा क्षेत्र, दूसरा चरण में 5 संसदीय क्षेत्र और 35 विधानसभा क्षेत्र, तीसरा चरण में 6 संसदीय क्षेत्र और 42 विधानसभा क्षेत्र और चौथा चरण में 6 संसदीय क्षेत्र और 41 विधानसभा क्षेत्र का मतदान हुआ था। पाटकुरा विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन बीजू जनता दल का प्रार्थी के निधन पर स्थगित रखा गया है। संसदीय क्षेत्रों में पूरी ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। कल सुबह वीवीपैट के मतगणना के बाद 30 जिलों में 63 स्थान पर निरापत्ता व्यवस्था के साथ मतगणना किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए भुवनेश्वर से सुधांश चड़ा।
अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां लोकसभा की 25 और विधानसभा की 175 सीटों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में मतगणना 36 स्थानों पर 55 केंद्रों में की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
The stage is all set for counting of votes tomorrow in Andhra Pradesh. The Election Commission of India has all set for counting of votes in EVMs and VVPATs at 36 counting centers across 13 districts Andhra Pradesh for both Assembly and Lok Sabha constituencies. The AP CEO Gopalakrishna Dwivedi has given instructions to the district election officers to take the necessary steps for counting of votes. The police department too has done all the elaborate security arrangements for counting process. The election was held for 175 Assembly and 25 Lok Sabha seats simultaneously on April 11th in the first phase itself. This time, all the important political parties have expressed and highlighted a special category status for the state of Andhra Pradesh is the only solution to solve the unemployment by establishing the large-scale industries. On the other hand, most of the parties have come down with a promise to extend old age pensions and also highlighted agricultural issues, and if voted to power, they would solve the right problem. This all depends upon how the voters calculate the talent of each political party in the election will be known very shortly. Dr. G. Kondalrao, AIR News, Vijayawada.
Tamil Nadu went for one of its biggest ever by-elections in this history, along with the Lok Sabha general elections. 22 seats went to the polls in two phases, on April 18th and on May 19th. The results of the by-elections assume greater importance, as winning as many as seats possible out of the 22 seats is very crucial for the ruling AIADMK to save its government. The AIADMK government is surviving with a wafer-thin majority. Out of the total strength of 234 seats in the State Assembly, it has only 104 legislatures, including the Speaker. More from our correspondent.
Out of the 22 Assembly seats that went for by-election, 18 seats were for those vacated by the AIADMK rebel MLAs, as they were disqualified by the Speaker under anti-defection law. They were charged to be hobnobbing with Mr. T.T.V. Dinagaran, who floated his own party after his ouster from the AIADMK. Three other vacancies were due to the demise of the incumbent members, including DMK's patriarchal leader CM Karunanidhi in Thiruvarur. Furthermore, three more AIADMK MLAs have been issued with show cause notice by the Speaker for canvassing for Mr. Dinagaran's AMMK party during the recent campaigning. Two other members who own an AIADMK symbol but belong to smaller outfits remain fence-sitters. Therefore, the survival of the AIADMK-led government in Tamil Nadu depends largely on the outcome of the Assembly by-election results. Jay Singh, AIR News, Chennai.
देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव परिणामों पर पहली बार लगातार 40 घंटे का कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019 कल सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में लगातार प्रसारण करेगा। देशभर में आकाशवाणी की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करेंगी। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, विविध भारती और अन्य चैनलों के माध्यम से देश भर में हर घंटे समाचार बुलेटिन सुने जा सकेंगे।
चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताजा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताजा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे एफएम गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
तो जगदीश जी, हम चर्चा की शुरुआत करें, साउथ की तरफ हम जाना चाहेंगे। दक्षिण भारत इस बार बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जो करंट न्यूज है वो अभी सीधे अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आ रही है, वहां पर आपका क्या मानना है कि इस बार हिंसा चुनाव के बाद शुरू हो रही है और उसके बाद बहुत ज्यादा, मतलब हम कहेंगे कि दबाव की वहां पर चुनाव की राजनीति चल रही है?
हिंसा चुनाव के दौरान भी हुई थी, आपको एक या दो घटनाएं हुई थी और एकाध जगह बम भी फटे थे, लेकिन बाय एंड लार्ज जिसको हम कहें तो अरुणाचल में भी चुनाव शांतिपूर्ण ही हुआ है। अभी चुनाव के बाद जो घटना है उसमें तो एनएससीएन के आईएम ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि हालांकि वो भारत सरकार के साथ समझौते की टेबल पर आए थे
और बातचीत भी चल रही है, लेकिन कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो इस तरह की वारदात इलेक्शन के मौके पर करके और डिस्टर्ब करना चाहते हैं पीस को। कि अरुणाचल में ठीक है, किनली को बहुत कीन फाइट है, और बीजेपी में जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस में और एनपीपी एक पार्टी है जिसके साथ जो जिसने कुछ 21-22 सीटों पर या 27 सीटों पर भाजपा को समर्थन भी दिया है। तो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है, चाइना से चीन से लगा हुआ क्षेत्र है, चीन हमेशा उसको अपना क्षेत्र बताता रहा है, इसलिए भारत के लिए वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से वो सत्ता में आई है उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लिए और एक विशेष फंड बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और जिसमें अरुणाचल को सबसे बड़ा हिस्सा और मिला है। उसके कारण अरुणाचल में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक सभा वहां हुई उसमें भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कांग्रेस यहां शासन में रही है, दूसरी छोटी पार्टियां भी रही हैं, लेकिन भाजपा केंद्र में आने के बाद से उत्तर पूर्व का सही मायने में विकास शुरू हुआ, जो कि वहां के लोगों को दिख भी रहा है। अब अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स असम को छोड़ दें तो दूसरे राज्यों की हालत यह है कि वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो सामान्यतः अब अपना भला इसमें समझते हैं कि वो और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बने रहे। फिर अरुणाचल तो दल बदल का, पार्टी बदल का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, और हर चुनाव में ये देखा गया है। 2014 में जो जनादेश था वो कांग्रेस के पक्ष में था, और किस तरह की घटनाएं उसके बाद हुई, यानी कोर्ट को एक सरकार को रीइंस्टीट भी करना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को, हालांकि कुछ ही घंटे के बाद उनको छोड़ना भी पड़ा। तो ऐसी घटनाएं वहां होती हैं, तो इसलिए पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को बहुत आप नहीं आंक सकते हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में है उसके साथ अगर राज्य की सरकार है और उसको समर्थन मिलता है राज्य में, जैसा कि जो सरकार इस समय भाजपा की वहां काम कर रही है पेमा खांडू की, और उनकी सरकार ने ठीक ठाक काम किया है, और 2017 के शुरुआत में वो आए थे और तब से उनकी सरकार एक तरह से स्टेबल है, और जो डिफेक्शन वगैरह की कोशिश जरूर हुई लेकिन उस तरह से उन्होंने मैनेज करके रखा और डेवलपमेंट की जो केंद्र की योजनाएं थी उसको ठीक से लागू किया।
जी, तो ये बताइए कि अरुणाचल की हमने बात की, लेकिन इस वक्त अगर हम केंद्र में देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस में चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो उनके फेवर में बहुत ज्यादा आते हुए नहीं दिख रहे। तो इतना एक्टिव होना उनका, और अगर हम आंध्र प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जो दो गुट बन चुके हैं वो कितना प्रभावशाली लग रहा है?
देखिए, 23 के बाद चंद्रबाबू नायडू के पास बहुत समय रहने वाला है दिल्ली में नेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय दिल्ली में, कोलकाता में और दूसरी जगह पर बिता रहे हैं, शायद उसका वो पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि जो क्लियर ट्रेंड्स है, देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि आप एग्जिट पोल को अगर न भी माने तो वाईएसआर रेड्डी के जगनमोहन रेड्डी ने जो 2017 डेढ़ साल से वो यात्रा कर रहे हैं, 3600 किलोमीटर वो लोगों गांव गांव गए हैं, और लोगों में ये बात घर घर गई कि ये एक यंग लीडर है जो उनके घर तक आया है। और फिर हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने लास्ट बजट में और कुछ डोल्स कुछ ऐसी योजनाएं घोषित की थी जिससे कि उनको फायदा मिलता, लेकिन वाईएसआर रेड्डी यानी उनके पिताजी जब जगनमोहन रेड्डी के, तो उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, और लोगों में अगर उनकी असामयिक मौत नहीं होती तो इस समय आंध्र पर उन्हीं का शासन होता, ये आंध्र के लोग भी मानते हैं। तो उनका जो पुत्र है वो ही उसी लीगेसी को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने जो घोषणा की है, दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने चुनाव के दौरान की है कि एक तो वो जैसे ही इलेक्शन में जीतेंगे अगर तो प्रदेश के सभी किसानों के खाते में वो 50,000 रूपये, जिसको सहारा नाम की कोई वाईएसआर सहारा और एक वाईएसआर आसरा एक बड़ी स्कीम है कि जो लोग होमलेस हैं उनको घर बनाने के लिए 50,000 तक का और ऋण मुक्त कर्ज दिया जाएगा और आगे भी बिना ब्याज का कर्ज देंगे। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि लोगों को आकर्षित करती, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को ये लगता है कि कोई लीडर उनके दरवाजे पर आया और जगनमोहन रेड्डी जब से उनके पिता गुजरे हैं तब से वो पूरे प्रदेश को मथ रहे हैं और हमने देखा है कि उन्होंने एक ऐसी चुनौती खड़ी की है कि इसीलिए एग्जिट पोल में वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। यहां तक कि जो हैदराबाद की दो एजेंसीज हैं जो सर्वे करती है पोल करती हैं उनका भी आकलन ये है कि चंद्रबाबू नायडू की सत्ता जाने की राह पर है।
तो इसमें एक तो आपने जो किसान वाली बात बताई, महिलाओं को लेकर, उनके एनजीओ को लेकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर बहुत सारी योजनाओं की बात थी, लेकिन दिलचस्प बात जगदीश जी ये भी लग रही है कि एक तरफ सोनिया गांधी भी जो अपोजिशन के लीडर्स को काउंट कर रही हैं अपने पाले में, वो वाईएसआर की तरफ भी देख रही हैं, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ भी देख रही हैं। क्या वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से जगन मोहन रेड्डी वो दिन भूल जाएंगे जब उन्हें जेल जाना पड़ा था और किस तरह से कांग्रेस पार्टी उनके पीछे थी?
नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो ईवीएम को लेकर रल्ला मचा रही है, एग्जिट पोल आने के बाद से जो बहुत ही रैटल्ड है, बहुत विचलित है, परेशान है, वो सभी दरवाजे खटखटा रही है। और राजनीतिक दल कोशिश करते ही हैं कि जो कल तक उनका दुश्मन था, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, और अगर दोनों का स्वार्थ सदता है अगर कोई गठजोड़ करने से तो लोग मिलते हैं, ये राजनीति का उसूल है। तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी भी कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से उनको अप्रोच करेगी, वो टीएसआर को भी अप्रोच करेगी जिन्होंने बहुत ही कड़ा और एंटी कांग्रेस स्टैंड अभी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लिया था और बहुत कटु बातें राहुल गांधी के बारे में बोली थी, उनको भी वो टटोलेंगे निश्चित रूप से। और ये हरेक दल का, उनको ये लगता है कि हंग पार्लियामेंट शायद आए तो उस समय फिर हमको ही लीड लेनी पड़ेगी, तो इसमें कोई अननेचुरल अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन देखने वाली बात है कि जगनमोहन रेड्डी का भला किसमें है। जगनमोहन रेड्डी लंबे समय तक आंध्र पर शासन करने की योजना बनाकर चल रहे हैं और अगर उनको लगता है कि जो भी अगर ऐसी स्थिति आई, खुदा न खास्ता कि कोई हंग पार्लियामेंट हुई, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं कल तक के लिए, तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ये देखेंगे कि भाई जो भी सरकार बनेगी वो कोई स्थिर सरकार नहीं होगी, क्योंकि हमने देवेगौड़ा सरकार का, इंद्र कुमार गुजराल सरकार का, चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनी सरकारों का हश्र देखा है जो कांग्रेस के समर्थन से बनी और कांग्रेस ने किस तरह उनको गिराया, अपमानित करके गिराया। तो मेरा मानना है कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को ये बातें याद है, वो नौजवान आदमी है और ऑप्शन उनके सामने बेशक खुले हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो और सोनिया गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले मोर्चे की तरफ जाएंगे।
तमिलनाडु की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या लगता है कि सरकार मौजूदा जो है वो बचा पाएगी अपनी किस्मत को?
देखिए, पलानीस्वामी के लिए ये वाकई मतलब बहुत परीक्षा की घड़ी, बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है। जो 22 सीटें हैं उनमें से 5 तो उनको जीतनी ही जीतनी है, अगर उन्होंने 5 नहीं जीती तो उनका सरकार कल के बाद गिर जाएगी ये निश्चित रूप से। और द्रमुक और कांग्रेस का और दूसरे छोटे दलों का जो गठबंधन है वो अच्छा गठबंधन है, स्ट्रांग गठबंधन है, और उनकी पहली कोशिश तो जरूर ये होगी कि तमिलनाडु की सत्ता को हथियाया जाए। दिनकरन उनकी एक तरह से मदद कर रहे हैं, जो कि अन्ना द्रमुक से फूटकर जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा डैमेज अगर वो कोई कर रहा है तो दिनकरन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि जयललिता के वो उत्तराधिकारी होने के कारण मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए था, जिसकी कोशिश भी उन्होंने की थी, लेकिन वो बाहर हो गए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर मैं नहीं बना तो ये भी नहीं रहेंगे, तो उनकी पार्टी भी है इसके कारण अन्नाद्रमुक के लिए। लेकिन अन्नाद्रमुक ने एक काम जरूर किया है कि लोकसभा चुनाव में जो उनके अलाइज हैं, बीजेपी है, पीएमके हैं, उन सबको और वो सब उपचुनावों में अन्नाद्रमुक के साथ हैं, तो उनके कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और मेरा मानना है कि इस बदौलत पलानीस्वामी के लिए 5 से अधिक सीटें जीतना में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तमिलनाडु के इलेक्शन बहुत बदनाम रहे हैं कि बहुत पैसा बंटता है, वेल्लोर का इलेक्शन हमने देखा कि स्थगित हुआ, स्थगित होने के बाद भी मतदाता वहां से कह रहा है कि स्थगित होने से क्या होता है, जब भी होंगे फिर पैसा बंटेगा। तो 10-10 हजार पर वोट की रकम अगर वहां बंटती है तो समझा जा सकता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं, तो और सत्तारूढ़ पार्टी थोड़ी एडवांटेज में तो रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी पीएमके और इनके साथ इन्होंने और एक दो छोटे ग्रुप्स हैं जिनके साथ अन्ना द्रमुक का गठबंधन है, तो ये पहला चुनाव है तमिलनाडु में जो करुणानिधि और अन्ना जयललिता के बिना लड़ा जा रहा है। इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि द्रमुक और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तमिलनाडु में सचमुच ज्यादा सीटें पाएगा या नहीं पाएगा, या अन्ना द्रमुक पीएमके बीजेपी का गठबंधन ज्यादा सीटें पाएगा।
तो इससे तो ऐसा लग रहा है जगदीश जी कि सबसे ज्यादा जो अच्छी स्थिति अगर कोई मौजूदा सरकार के लिए है तो वो है उड़ीसा में, जहां पे सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए केंद्र के लिए भले ही मोदी को चुन रही हो वहां की जनता, लेकिन राज्य में वो चाहते हैं नवीन पटनायक वापस आए।
हाँ देखिए, ये बहुत मजेदार बात है और ये बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग आज ईवीएम को गाली दे रहे हैं वो कल मतदाताओं को कोसेंगे कि कैसे बेवकूफ मतदाता है कि उन्होंने इनको जितवा दिया। तो ये बहुत मतदाता के विवेक पर कभी संदेह करना नहीं चाहिए, और ये हमने आज नहीं हजारों बार देखा है, छोटे चुनावों में भी देखा है, विधानसभाओं के लोकसभाओं के चुनाव में भी देखा है कि मतदाता, हमने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में एक तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी को जितवाया, दूसरी तरफ 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट किया। तो उड़ीसा में भी वो वही कर रहे हैं। नवीन पटनायक सरकार ने चुनाव से पहले कुछ योजनाएं की थी, खासतौर पे किसानों के लिए जो उनकी योजना है कालिया नाम की, जिसमें 10,000 तक की नगद सहायता और दूसरी लोन की सुविधा वगैरह है, इसका बड़ा असर पड़ा है। और रिलेटिवली नवीन पटनायक का जो शासन है वो उनके लगातार शासन में इस बात की कोशिश हो रही है कि उड़ीसा में जो गरीबी है, बहुत अधिक मात्रा में गरीबी है, वो दूर हो और किसान वहां खुशहाल हो।
जी बिल्कुल, तो ये तो दिलचस्प बात है जो आपने भी बताई, और हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसके बाद बिहार में और दिल्ली में जब असेंबली इलेक्शन हुए तो रिजल्ट कुछ और ही कह रहा था, केंद्र में जनता ने कुछ और सोचा था और राज्यों में कुछ और। जगदीश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए और अपनी बहुमूल्य जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें airnsdtalks@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी समाचारों और मुद्दों के साथ। नमस्कार।
लोकतंत्र के महापर्व पर समाचार सेवा प्रभाग की खास पेशकश, विशेष जनादेश 2019, कौन पहनेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे ताजा हाल।
देहरादून से राघवेश पांडे, दिल्ली से आनंद कुमार।
आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु।
शिलांग से समीर वर्मा।
रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सन्हा।
नागपुर से गौरी मराठे।
साथ ही विशेषज्ञ करेंगे चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण, 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध। नवीनतम परिणामों के लिए देखें हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और फॉलो करें ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
जनादेश 2019।